परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, दिलो जहाँ पेश खिदमत है, दिलो जहाँ पेश खिदमत है, ये नजरें लेके आया हूँ तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया। मेरी उम्मीद की बस्ती हो रोशन नाम से तेरे, मेरी उम्मीद की बस्ती हो रोशन नाम से तेरे, करो आशा मेरी पूरी ये आशा लेके तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, दिलो जा पेश खिदमत है, दिलो जा पेश खिदमत है, ये नजरें लेके आया हूँ तेरे दर आया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसकी आखिरी पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, बुराइयों से छुटकारा देने पाए और वे एक सच्चे मार्ग पर चल सकें। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उनसे भी बातचीत करें, उन्हें भी छुए और चंगाई दें, उन्हें भी अपने वचन के ज्ञान में बढ़ाएं। आज का अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम मलाकी नबी की पुस्तक उसके अध्याय 2 में भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए बातों को देखेंगे कि परमेश्वर याजकों को ही झिड़कता है कि वे पवित्र स्थान को अशुद्ध करते हैं। मूल भाषा का अर्थ है वे मंदिर के विरुद्ध चल रहे थे। परमेश्वर की सेवा करने की अपेक्षा वे परमेश्वर के विरुद्ध उसके नाम का अपमान कर रहे थे। उनकी आराधना ईश निंदक थी। पहले अध्याय में हमने देखा था कि याजक तुच्छ बलि चढ़ाकर परमेश्वर का अपमान करते थे। उनका दोष वास्तव में दोषपूर्ण पशु लाना ही नहीं था कि परमेश्वर उन्हें झिड़के। हम देखेंगे कि आगे चलकर परमेश्वर सीधा सा प्रश्न पूछता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है। अतः हम देखते हैं कि चिंता का विषय वास्तव में बलि की निर्दोषिता से बढ़कर वेदी पर चढ़ाई गई बलि के पीछे उनका उद्देश्य था। लय व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं कि वहां 5 बलियां हैं जो प्रभु यीशु की ओर संकेत करती हैं। प्रत्येक बलि उस आने वाले की ओर संकेत करती थी और यह आने वाला पवित्र, द्वेष रहित, शुद्ध और पापियों से अलग होगा। वह एक सिद्ध जन होगा। अतः जो बलि उसका प्रतीक थी उसे निर्दोष होना था। परंतु मलाकी के युग में याजक दोषी बलि चढ़ाकर परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे थे, क्योंकि आने वाले सिद्ध जन की प्रतीक स्वरूप दोष बलि को वे लोग दोषी वस्तुओं में लाना चाहते थे, अर्थात परमेश्वर का अपमान ही था। आज भी तो ऐसा ही होता है। कुछ वर्ष पूर्व एक नाटक में प्रभु यीशु का नाम बहुत ही बदनाम किया गया था। संसार तो प्रभु यीशु को नहीं भूल सकता, परंतु उसके बारे में बुरा तो ना सोचें। उसके विषय अनुचित बातें करना और लिखना परमेश्वर के नाम की निंदा करना ही है। लोग कहते हैं, शैतान ने मुझसे यह करवाया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान ने आपसे कुछ नहीं करवाया, यह तो आपका पुराना पापी स्वभाव है। एक और बात है जो हम प्रायः सुनते हैं, परमेश्वर दंड देगा। जी नहीं, परमेश्वर दंड नहीं देगा। क्या आप मान सकते हैं कि परमेश्वर बच्चों की पिटाई करने के लिए उनके पीछे पीछे भागेगा? मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की गलत छवि प्रस्तुत करने से सावधान रहें। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमें उसका भय मानना है। वह पाप का दंड देता है और भविष्य में भी अवश्य ही देगा। वह पवित्र भय से पूर्ण परमेश्वर कहलाता है। वह पवित्र परमेश्वर है, उसका सम्मान करना है। जी हाँ, उसकी आराधना करना आवश्यक है, उसकी सराहना करना चाहिए। आज हमारे रूढ़िवादी कलीसियाओं में भी परमेश्वर की शुद्ध स्तुति नहीं होती है। परमेश्वर की स्तुति से इनकार और दूसरी ओर मनुष्य की प्रशंसा करना परमेश्वर के नाम का अपमान करना है। यह आज की कलीसिया का दोष है। मेरे श्रोता मित्रों, अध्याय 1:6 में परमेश्वर अपने नाम के अपमान के कारण याजकों को झिड़कता है। अब यहां अध्याय 2:1 में वह फिर से उन्हें झिड़कता है। आइए हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। देखिए, वह अब भी याजकों को ही झिड़क रहा है। मलाकी 2:2 में लिखा है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। वे अपने पद की गंभीरता को नहीं निभा रहे थे, इस कारण परमेश्वर उन्हें प्रजा से अधिक दंड देगा। क्यों? उनके पद के उत्तरदायित्व को न निभाने के कारण। उन्हीं के कारण वहां ऐसी दुखद दशा उत्पन्न हुई थी। वे बलि के अशुद्ध पात्रों को अनदेखा कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें सत्य की व्यवस्था दी थी और उन्हें प्रजा को उसकी शिक्षा देना था। अब मैं एक अत्यधिक कठोर बात कहने जा रहा हूं। मैं एक अपराधी हत्यारा होना अधिक उचित समझता हूं, अपेक्षा इसके कि अविश्वासी मन लेकर प्रचार मंच पर चढ़ूं और कलीसिया को कुछ एक धार्मिक उक्तियां सुनाऊं। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को निश्चय ही उत्तरदायी ठहराएगा। मलाकी की पुस्तक 2:3 में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। ध्यान दीजिए, लिखा है देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा। परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा था और उन्हें बहुत अच्छी फसल मिल रही थी। आपको स्मरण होगा कि उन्हें फसल का दशमांश परमेश्वर के भवन में लाना था, जो याजकों के निर्वाह के लिए था। परमेश्वर कहता है कि वह उनके बीज को झिड़केगा कि उनकी फसल ना उगे, जिससे कि याजकों का जीवन निर्वाह कठिन हो जाए, उनकी समृद्धि का अंत होने वाला है। आगे कहता है, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। यज्ञ पशुओं की अंतड़ियां याजकों को दी जाती थी, परंतु अंतड़ियों का वह भाग जिसमें मल होता था वह फेंक दिया जाता था। बलि के पशु में वह भाग नहीं रखा जाता था। अतः परमेश्वर कहता है कि वह पशुओं के मल द्वारा उन्हें अशुद्ध कर देगा, अर्थात वे वेदी पर सेवा के योग्य न रहेंगे, क्योंकि वे अशुद्ध हो जाएंगे। यह परमेश्वर का कठोर वचन है। मलाकी की पुस्तक 2:4-6 में आगे लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। मेरे प्रियो, लेवी गोत्र को चुनने का कारण यहां प्रकट होता है। यदि हम याकूब के पुत्र लेवी को देखें तो उसमें परमेश्वर द्वारा चुने जाने की योग्यता नहीं थी। याकूब ने अपने मरणशया पर अंतिम समय प्रत्येक पुत्र के लिए भविष्यवाणी की थी, जिसका उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक 49 में है। उसने शिमोन लेवी के लिए एक ही भविष्यवाणी की थी। उत्पत्ति की पुस्तक 49:5-7 में, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तीतर बीतर कर दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर लेवी को इसराइल में तीतर बीतर कैसे करेगा? वे याजक बने और उन्हें भूभाग नहीं दिया गया। वे सब गोत्रों में बिखरे हुए थे। अब यदि लेवी ऐसा हत्यारा था तो उसका गोत्र याजक कैसे बना? हमें इतिहास में देखना है कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को याजक क्यों बनाया। सदियों बाद जब इसराइलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर मूर्ति पूजा की थी, तब मूसा ने सब मूर्ति पूजकों को घात करने का आदेश दिया था। उस समय लेवी गोत्र ने मूसा की आज्ञा का पालन किया था। जी हां, मरते समय मूसा ने 12 गोत्रों को, जो अब लाखों की संख्या में थे, अपने पास बुलाया और उनके लिए भविष्यवाणी की। लेवी गोत्र के लिए उसकी भविष्यवाणी थी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसके 8-10 पद में, तेरे तुम्मीम और अरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इसराइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दें, यद्यपि लेवी एक निर्दयी हत्यारा था, उसका गोत्र परमेश्वर के वचन का पालन करता था। उन्होंने परमेश्वर की वाचा मानी, अतः परमेश्वर ने उन्हें याजक बनाया कि वे इसराइल को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाएं और उसके समक्ष प्रार्थना एवं बलि चढ़ाएं। ये बलियां प्रभु यीशु की ओर संकेत करती थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर उठ न सकें। मेरे मित्रों, लेवी गोत्र के साथ परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी। उसे इसराइल को शिक्षा देनी थी, उसे प्रार्थना स्थल अर्थात धूप जलाने की वेदी पर सेवा करनी थी और प्रभु यीशु के प्रतीक होम बलि चढ़ाना था। अब जब हम मलाकी के युग में आते हैं तो बेबीलोन की बंधुआई से स्वदेश लौटे इसराइलियों में लेवी क्या कर रहे थे? वह याजक रोगी और पशु और पंगु पशुओं को भी बलि के रूप में स्वीकार कर रहे थे। वह परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा था। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर का वचन कैसे सिखाता? यह कैसा परिवर्तन है? 70 वर्ष की बंधुआई के बाद भी लेवी ने सबक नहीं सीखा था। मलाकी के मुंह से परमेश्वर कहता है कि मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उनको दिया कि वह भय मानता रहे। परमेश्वर कहता है कि लेवी कभी उसका भय मानता था और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था, परंतु अब नहीं। वह परमेश्वर के वचन के सत्य की शिक्षा देता था, परंतु अब उसका गोत्र ऐसा नहीं कर रहा था। वे शिक्षा देने से चूकते ही नहीं थे, वे परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन भी करते थे। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा लाया था। देखिए, वह मनुष्यों के लिए एक आदर्श था। अब कैसा परिवर्तन आ गया है? मेरे प्रियो, इसमें हमारे लिए अच्छी शिक्षा है। परमेश्वर का भय माने बिना परमेश्वर की सच्ची सेवा करना संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु को मनुष्यों के मध्य प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक है। यदि प्रभु यीशु ऊंचा उठाया जाएगा तो वह मनुष्यों को अपनी ओर स्वयं खींच लेगा। वह हमारी गवाही द्वारा ऊंचा उठाया जाता है। गवाही का अर्थ है हमारा जीवन और वचन। हमारा उदाहरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे वचन। मलाकी नबी की पुस्तक 2:9 में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। याजकों को सेनाओं के यहोवा का संदेशवाहक होना था। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि संदेशवाहक का अर्थ है दूत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इफिसूस की कलीसिया के दूत के लिए संदेश भेज रहा है, अर्थात उस कलीसिया के अगुए शिक्षक के लिए। आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो, परंतु मैं इसे सारांश में कहना चाहता हूं कि किसी भी कलीसिया के पास्टर का एकमात्र उत्तरदायित्व है कि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे। परमेश्वर इस कलीसिया पर दया करे जो अपने पास्टर को जनसंपर्क अधिकारी बनाना चाहती है, कि वह रोगी शिशुओं से संपर्क करता रहे और उनके पेट से हवा निकालने तथा कलीसिया प्रबंधन में समय लगाए, जबकि उसे वचन के अध्ययन में समय लगाकर कलीसिया को वचन की शिक्षा देना है। एक बार मुझे किसी कलीसिया के पदाधिकारी ने फोन किया। वह अपने पास्टर से अप्रसन्न था क्योंकि उसका पास्टर कलीसिया की व्यवस्था की अपेक्षा बाइबल अध्ययन में समय लगाता था। मैंने उससे पूछा, क्या आप उपसेवक हैं? उसने कहा, जी हाँ। क्या आप रोगियों की सुधि लेते हैं? उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैं तो अत्यधिक व्यस्त रहता हूं। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं कि यह आपका उत्तरदायित्व है? आपको रोगियों की सुधि लेना है, आपको कलीसियाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्रहण करना है। पास्टर का काम है वचन की शिक्षा देना। यदि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देता और प्रचार मंच पर चढ़ जाए तो अलग बात है, परंतु यदि वह बाइबल अध्ययन में समय लगाता है और परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वह परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करता है। मेरे मित्रों, आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों के साथ भी यही समस्या थी। यूनानी सभ्यता के यहूदी शिकायत कर रहे थे कि स्वदेशी विधवाओं की तुलना में उनकी विधवाओं को अनदेखा किया जा रहा था। यह समस्या प्रेरितों के सामने रखी गई तो उन्होंने वास्तव में एक अति उत्तम समाधान सुझाया। उन्होंने कलीसिया से कहा कि वे इस काम के लिए उपसेवकों का चुनाव करें। प्रेरितों के काम 6:2 में लिखा है, तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। मेरे प्रियो, कलीसियाई सेवा पूरी करने के बाद आज मैं महान सुविधा के स्थान पर उपस्थित हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे अब शिशुओं को गोद में उठाकर घुमाना नहीं पड़ता। और यद्यपि मैं प्रबंधन का काम भी करता हूं तो यह मेरा संपूर्ण समय नहीं लेता है। मैं पूर्व से कहीं अधिक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं। यदि मैं पास्टरीय सेवा में होता तो शायद मैं यह काम नहीं कर पाता। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में अधिक समय मुझे लगाना है। जैसा कुछ लोग तो पहले ही सोच रहे हैं कि मैं बाइबल अध्ययन में बहुत अधिक समय लगाता हूं, परंतु मेरे विचार में परमेश्वर का वचन अध्ययन करना और उसकी शिक्षा देना पास्टर का उत्तरदायित्व है। जो कोई परमेश्वर के वचन को बांटता है उसको अध्ययन करना ही है। मलाकी के युग में याजक अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे थे, अतः परमेश्वर ने उनसे कहा। मलाकी नबी की पुस्तक 2:8 और 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। मेरे प्रियो, एक समय वह भी था जब लोग पादरी के उपदेशों को ध्यान से सुनते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि सेवक उसके वचन की शिक्षा नहीं देगा तो ऐसा ही होगा। मेरे मित्रों, चाहे सेवक हो चाहे विश्वासी हो, हर एक को परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन दिखने पाए, लोग आपके जीवन को देखकर कहने पाए कि आप परमेश्वर के जन हैं। क्या आज आपकी कलीसिया में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है? क्या आप अपने घर में परमेश्वर के वचन का अध्ययन प्रतिदिन करते हैं? यदि नहीं, तो आज आपके पास समय है कि आप निर्णय लें और परमेश्वर के वचन को जानें, उससे पढ़ें, क्योंकि जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, और जितना अधिक आप उसे जानेंगे उतना ही अधिक आप उससे प्रेम करेंगे, और जितना अधिक आप उससे प्रेम करेंगे उतना ही अधिक आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मेरे मित्रों, आज आप निर्णय लें और परमेश्वर के वचन को थाम लें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
न बंदा जाएगा खाली तेरे दरबार से यीशु, न बंदा जाएगा खाली तेरे दरबार से यीशु, सदा रोशन जमीरी की तमन्ना ले